अभी कुछ मिनट पहले यहां आपके सामने जुसई इब्दाइया की बात हुई और कहा गया कि जुसई इब्दाइया वो माजजाती लतीफ जिस्म है जो उन फयकून का मजहर हुआ करता है। आपने कुरान मुकद्दस में सुना होगा या पढ़ा होगा कि मकामी कुन वो मकाम है जहां पर अल्लाह ताला हर चीज को वजूद देता है, हर चीज को हस्ती से नीस्ती से पैदा करता है, यानी हर चीज को नीस्ती से हस्ती में लाता है और वो उस मकाम पर जो कुछ चाहता है उसको अमल में लाता है। अगर माना जाए कि खुदा का फेल है, एक्शन है, तो उसके फेल का मकाम कुन का मकाम है और वो कुन जो अल्लाह ताला का आमर है जिस्मी लतीफ पर वाका होता है, वही जिस्मी लतीफ इस काबिल है कि खुदा के मंशा के मुताबिक लातादात जुहूरात में बदल जाता है, यानी अल्लाह जैसा चाहता है जिस्मी लतीफ उसी सूरत को इख्तियार करता है, जिस्मी लतीफ ऐसा है। और जुसई इब्दाइया का मतलब है कि वो जिस्म जिस पर इब्दा का काम वाका होता है, जिस पर कुन का अमर वाका होता है, और कुन एक ऐसा बारी अमर है कि इसको कोई शय बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मगर जो सही इब्दाइया है जो अल्लाह ताला के इस इंतहाई ग्रान यानी संगीन या बारी अमर को कबूल करता है और इस कुन के मंशा के मुताबिक वो एक सूरत इख्तियार करता है। चुनांची जुसई इब्दाइया को कुरान और दीनी फलसफे ने बहुत से नाम दिए हैं, उन बहुत से नामों में से एक नाम मुल्क खुदा है, यानी खुदा की सल्तनत, खुदा की शाहिनशाहियत। क्या? खुदा की शाहिनशाहियत। तो खुदा की शाहिनशाहियत कहाँ है? आप कहेंगे आसमान में, जमीन में, हर जगह पर, ठीक है, लेकिन खुदा की शाहिनशाहियत का कोई खास मकाम होना चाहिए, कोई मरकज होना चाहिए, कोई असल जगह होनी चाहिए, और वो मरकज या कि खास और आला मकाम जो है वो जुसई इब्दाइया है। उसी ने ये सलाहियत है कि खुदा उसे जैसा चाहे वैसा हो जाए, ये जुसई इब्दाइया है और वो तौहीद का मकाम है, वहदानियत का मरकज है। इस खत के अखीर में ये कहा गया था कि इस खत में ये कहा गया था कि जिस तरह सब इंसान अकली तौर पर अकली कुल में जमा हैं, एक हैं, यानी इंसान अपनी जुज़वी उकूल में मुंतशिर हैं, अलग अलग हैं, लेकिन अकली कुल्ली में सब एक ही मकाम पर जमा हैं। ये तो अकल के एतबार से बात हुई। इसी तरह नफ्सी कुल्ली में सारे इंसान रूहानी तौर पर जमा है। जब ये दोनों बातें हो गई कि अकली तौर पर भी सब इंसान एक मकाम पर जमा हैं और रूहानी तौर पर भी उनके जमा होने का एक खास मकाम है, तो अब रही बात जिस्मानी तौर पर जमा हो जाने का, तो जिस्मानी तौर पर भी सब इंसान एक मकाम पर जमा हैं और वो जिस्मानी مقام جس میں سب انسان ایک ہی جسعی ابدائیہ ہے، یعنی وہ جسم جو کن فیکون کا کام کرتا ہے، یا کہ کن فیکون کے امر کو قبول کرتا ہے، وہ جسم ایسا جسم ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، کامن ہے، جس میں سب انسان ایک ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان عقل کلی میں عقلی طور پر جمع ہے اور نفس کلی میں روحانی طور پر ایک ہے، اسی طرح وہ سب انسان جسعی ابدائیہ میں جسمانی طور پر ایک ہے، تو جب قانون ایک ہونے کا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عقل کلی، نفس کلی اور جسم کلی یا کہ جسعی ابدائیہ بھی ایک ہو؟ یہ سوال، جواب ہے کہ ہاں، اس کے لیے بھی جسعی ابدائیہ ہی ایک ایسا جسم ہے جس میں کہ عقل کلی، نفس کلی اور خود جسم ایک ہے۔ اس کا ظاہری نمونہ امام اقدس اطہر کی مبارک شخصیت ہے۔ ایک اسماعیلی امام کی شخصیت پر اچھی طرح سے سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، یعنی اس مسئلے کو کہ جہاں امام کا جسم مبارک ہے وہاں تینوں چیزوں کا سنگم ہے، کیا؟ عقل کلی، نفس کلی اور جسعی ابدائیہ۔ تو کائنات و موجودات میں جو سب سے بڑی تین چیزیں ہیں، خدا کی بادشاہی میں، خدا کی شاہنشاہیت میں جو تین عظیم چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو ہے عقل کلی، دوسری شے ہے نفس کلی، اور تیسری چیز ہے جسعی ابدائیہ، یعنی امام کا معزانہ بدن۔ تو یہ تینوں عظیم اور معزاتی چیزیں امام کی ذات میں ایک ہیں۔ جب امام کی ذات میں عقل کا مرکز، روح کا مرکز اور جسم کا مرکز ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام میں کائنات اور موجودات کی ہر ہر چیز ایک ہے، اور اسی معنی میں فرمایا گیا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ہر لطیف چیز کو امام کی ذاتی اقدس و اطہار میں یکجا کر دیا ہے۔ تو یہی حقیقت دوسری طرف سے مونو ریئلزم کا ایک نمونہ ہے، جب فرمایا گیا کہ ہر چیز امام کی ذات میں محدود ہے، ہر چیز امام کی ذات میں سموئی ہوئی ہے، تو اس لفظ سے کوئی چیز باہر نہیں رہی۔ ہر چیز، جب خدا نے فرمایا ہر چیز تو ساری چیزیں اور سب چیزیں، اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض چیزیں بری ہیں تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ اچھی چیزوں کے علاوہ بری چیزیں بھی امام کی ذات میں یکجا ہو جائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے یہ پوچھا جائے گا کہ اچھا، بری چیزیں جو آج اس دنیا میں بری ہیں تو کیا یہ اپنی اصل میں، اوریجن میں، ازل میں بھی بری تھی، یا یہ کہ یہ چیزیں دنیا میں آ کر بری ہو گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مثال بھی پیش کی جائے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور قرآن نے اس آسمان سے برسنے والی بارش کو ماءً طہورا کہا، یعنی پاک پانی، لیکن یہ پانی یعنی یہ بارش جب زمین کی سطح کو چھوتی ہے تو زمین کی بناوٹ और जगह के लिहाज से और पाक व नापाक के एतबार से पानी की मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ रंग होते हैं। वरना जहाँ पानी आसमान में है या फिजा में है या बादलों में है तो उसमें किसी पानी के आलूदा या गंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह जो चीज़ें इमाम की ज़ात में हैं वो दो हिस्सों में यानी खैर और शर में तासीम किस तरह हो सकती है, वो तो यकरंगी में है और वहाँ तो वही तसव्वुर है जो तमाम चीज़ों के मुतालिक असली तसव्वुर पाया जाता है। यानी कोई नहीं कह सकता है कि इबलीस शुरू ही से इबलीस है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक मिसाल है कि बुरी चीज़ों की जब हम मिसाल लेना चाहते हैं तो चलो उसमें हम इबलीस की मिसाल लें। जब हम इबलीस की हिस्ट्री को देखते हैं तो वो शुरू शुरू में एक फिश्ता नज़र आता है। इसी तरह जितनी रूहें इमाम की ज़ात में हैं तो वहाँ अज़ल के तौर पर हैं, मकामी अज़ल के तौर पर हैं, इसलिए वो तमाम चीज़ें साफ़ व शफाफ़ व लतीफ़ हैं। अगर माना जाए कि काफिर की भी कोई रूह वहाँ पर मौजूद है तो वो रूह वहाँ काफिर कैसे हो सकती है। जिस तरह हमने आसमान से बरसने वाली बारिश की एक उम्दा और साफ सुथरी मिसाल पेश की, चलिए दूसरी मिसाल हम पेश करते हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को या मुख्तलिफ धात के टुकड़ों को या लोहे के टुकड़ों को या मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियों को आग में डालते हैं तो वो आग कुछ देर के बाद उन तमाम चीज़ों को अपना हमरंग और हम जिन्स बना लेती है। जलने वाली आग में जो भी ईंधन है वो गंदा कब है, वो नासाफ कब है, क्योंकि आग की खासियत ये है कि हर चीज़ को जलाकर आग ही बना लेती है। इस किस्म की और भी मिसालें हम पेश कर सकते हैं। चलिए हम शहद की मक्खी की एक मिसाल पेश करें। आप जानते हैं, आपने किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा कि शहद की जो मक्खियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों से और फलों से शहद को बना लेती हैं, और जब शहद बन जाता है तो उसका टेस्ट एक ही होता है और रंग भी एक ही होता है। मगर जब हम देखते हैं फूलों को या फलों को तो उन फूलों में कोई फूल कड़वा भी हो सकता है, कोई फूल ऐसा भी हो सकता है कि उसमें शीरीनी न हो, और इसी तरह फल भी एक जैसे नहीं होते हैं। पर जब ये सब फूल और ये सब फल शहद की मक्खियों के पेटों में होते हैं तो उस वक्त उनमें यकरंगी पैदा हो जाती है, क्योंकि शहद की मक्खियों का जो बातिन या जो पेट है वो एक ऐसा कारखाना है कि कुदरत ने उसको ये सलाहियत दी है कि वहाँ पर तमाम चीज़ें एक हो जाती हैं, यानी तमाम अशिया एक रंग हो जाती हैं। ये तो एक छोटी सी हकीर सी मखलूक थी जो शहद की मक्खी है, उसमें ये कुव्वत है, ये सलाहियत है। इसके अलावा हम जानवरों को देखते हैं, दूध वाले जानवरों को, मसलन हम गाय को देखते हैं, वो घास चरती है किसी चरागाह में या किसी बाग में। जब हम उन घास को देखते हैं तो तमाम घास के मज़े और रंग टेस्ट अलग अलग होता है, और जब गाय उन मुख्तलिफ घासों को खा लेती है तो और फिर उनकी जुगाली करके वो अपने लिए दूसरी गिजा बना लेती है, तो उसमें से दूध बनता है। मगर दूध में हम ये तमीज़ नहीं कर सकते हैं कि कौन सी घास का दूध कौन सा है, और दूध के दरमियान क्या फ़र्क है या क्या रंग है। लेकिन उसमें तो यकरंगी और हमाहंगी पाई जाती है, और उसका एक ही रंग होता है और एक ही मज़ा होता है। ये वहदानियत की मिसाल है, और इसलिए इमाम मुबीन की ज़ात में जो भी रूहें हैं वो मोनोरियलिज्म के अंदाज में हैं कि वहाँ एक हकीकत है और सारी चीज़ें वहाँ पर एक हो जाती हैं। हम इस दुनिया में देखते हैं कि कितना तजाद है, कितना इख्तलाफ है, और एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान कितना फर्क इम्तियाज पाया जाता है। ठीक है, ये तो आलमी इख्तलाफ है और आलमी तजाद है। जब हम खुदा की बादशाही में एक आलमी तजाद को या एक आलमी इख्तलाफ को देखते हैं तो हमें बावर करना चाहिए कि इसी तरह का एक दूसरा आलम है जो वो आलमी इबादत है, वो यूनिटी की दुनिया है, वो वहदानियत की दुनिया है। तो उसमें यकरंगी पाई जाती है और कोई फर्क तफावत नहीं पाया जाता। जैसे कुरान ने कहा कि मा तरा फी खल्क़ रहमान मिन तफावत, खल्क के दर्जे हैं और खल्क का एक आला दर्जा भी है, उसको खल्क़ रहमान कहा जाता है। और जिस तरह मसावात की इस्तिलाह है, ये किसी हुकूमत के मसावात, किसी कानून के मसावात, और हम ये भी मानते हैं कि मसावाती मुहम्मदिया, इसी तरह हमें क्यों नहीं मानना चाहिए कि मसावात रहमानिया भी है, यानी मसावात के मानी बराबरी। हमें दोनों बातों को तस्लीम कर लेनी चाहिए, एक ये कि मसावात नहीं है वो ये दुनिया है, एक ये कि मसावात है वो आलम इबादत है। तो इसी को कहा गया कि मा तरा फी खल्क़ रहमान मिन तफावत, ए रसूल आपको मसावाती रहमानी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो रूहों का एक मकाम है वहां पर यकरंगी है, इस यकरंगी को चाहे हम अक्ले कुली में देखें, चाहे रूहों के एतबार से नफ्से कुली में देखें, चाहे जिस्म के लिहाज से हम जुसई इब्दाइया में देखें। अब मैं ये बात बताऊंगा जो बहुत बड़ी बात है। जब कोई खुशनसीब मोमिन अपनी रूह की शिनाख्त करता है और अपनी रूह को देखता है और मुख्तलिफ तरीकों से रूह को देखता है, मेडिटेशन में भी देखता है यानी आंखों को बांध के अपने बातिन में, ख्वाब में भी देखता है, ख्याल में भी देखता है, और जाहिर में भी देखता है। लेकिन आपको मैं अर्ज करूं कि इन तमाम मुशाहिदात में सबसे बड़ा मुशाहिदा कौन सा है? सबसे बड़ा मुशाहिदा ये है जो जाहिरी आंख से देखे, जाहिरी आंख से देखे। लेकिन सिर्फ जाहिरी आंख से नहीं, उस वक्त जाहिरी आंख और बातिनी आंख एक हो जाती है। शायद आपको याद होगा हमने अपने इन तस्करों में आपको बताया था कभी कि जाहिरी हवास और बातिनी हवास के दरमियान एक पर्दा है, वो कभी उठ जाता है। दुनिया में ये किस्सा मशहूर है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज को किसी कौम पर हमले से रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी थी। कुरान में इसका लेकिन आज साइंस की फिरावानी के इस जमाने में देखा गया तो कहीं ऐसी दीवार जो लोहे की सिलों से बनी हुई हो और जिस पर तांबा डाल के जोड़ा हो, ऐसी दीवार कहीं नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक रूहानी वाकया है। सद्य सिकंदर हर इंसान के अंदर है। सद्दी सिकंदर उस हिजाब का नाम है जो जाहिर और बातिन के दरमियान पाया जाता है। अगर सद्दी सिकंदर जो इंसान की इस हस्ती के अंदर है इसको उठाया जाए तो जाहिर और बातिन के दरमियान कोई फर्क तमीज बातें नहीं रहेगा, यानी जाहिर और बातिन हो जाएगा। और हाँ, जिस तरह कुरान में ये कहा गया है किस्से सिकंदर में या किस्से याजूज माजूज में कि सद्य सिकंदर यानी सिकंदर की दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन कहा गया कि जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त याजूज और माजूज इस दीवार को चाट लेंगे और फिर इसको नीस्त नाबूद करके दुनिया पर हमलावर हो जाएंगे। देखिए कि कुरान में जो इज्तिमाई तौर पर किस्सा पाया जाता है, यानी कुरान में जो किस्सा सब इंसानों से मुतालिक है, वो किस्सा इंफरादी सूरत में भी पाया जाता है। इशारा है कि अगर एक इंसान कामयाबी के साथ रूहानियत की मंजिलों से आगे गुजरता चला जाता है, यहाँ तक कि उस पर क़यामत बरपा हो जाती है और इसराफील सूर फूंकता है, तो उस वक्त याजूज माजूज जो रूहों का नाम है, कोड वर्ड है, वो आ जाते हैं। आ जाने के बाद इंसान की ज़ात के अंदर जो जाहिर बातिन के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, उसको वो रूहें चाट लेती हैं। चाट लेने के साथ साथ इंसान के हवासी जाहिर और हवासी बातिन एक हो जाते हैं, यानी उस वक्त जाहिरी आंख और बातिनी आंख एक हो जाती है, जाहिरी कान और बातिनी कान एक हो जाते हैं, और जाहिरी नाक और बातिनी नाक एक हो जाती हैं, और इसी तरह दीगर कुवतें उसकी जाहिरी जो बातिनी अलग थी इससे पहले वो एक हो जाती हैं। लिहाजा इसी कान से ही वो रूहानियों की आवाज़ सुनने लगता है, यहाँ तक कि सूर्य इसराफील जो एक रूहानी चीज़ थी, अब इस पर्दे के हट जाने से वो इसी कान से और इन्हीं दोनों कानों से सूर्य इसराफील की आवाज़ सुनता है। वो रूहानी चीज़ों को इन आँखों से देखता है और वो जन्नत की खुशबुओं को, और हालांकि वो यानी लतीफ़ चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं, इसी नाक से सुन सकता है। वाह, तो फिर उस वक्त कोई तमीज़ बाकी नहीं रहता क्योंकि जाहिर और बातिन एक हो जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि इंसान जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाता है, वैसे वैसे वो तौहीद और यूनिटी की तरफ या करंगी और वहदत की तरफ जाता है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है इस दुनिया की तरफ, तो वो इख्तलाफ और तजाद की तरफ आता है। इसलिए जो जुसई इब्दाइया है उसमें ये माजजा है कि वो जुसई इब्दाइया जो है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है या जो डिमॉन्स्ट्रेशन पेश करता है, उसमें दुनिया भर की मिसालें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो जुसई इब्दाइया क्या है, वो इमाम का माजजाती जिस्म है, ठीक, फिर वो पैगंबर का माजजाती जिस्म है, इसी के साथ साथ वो आपका माजजाती जिस्म। अभी आप सवाल करेंगे कि जो माजजाती जिस्म इमाम का है या पैगंबर का है, या जो जुसई इब्दाइया अक्ल कुल और नफ्स कुल का मजहर है, या जो जुसई इब्दाइया एक अजीम फरिश्ता है, वो आपका अपना जिस्म कैसे हो सकता है? ये सवाल अभी तवज्जो। इसलिए हो सकता है कि शुरू से लेकर अब तक हमने जितनी मिसालें दी उन सब का इशारा यही है कि वो मकाम इबादत है। क्या आप आम लफ्जों में ये नहीं कहते हैं कि असल में वासिल हो जाना, असल में वासिल हो जाने के बाद जो असल है जो आप हैं उसमें क्या फर्क है? आप इमाम में फना हो गए तो आप इमाम के माजाती जिस्म में दाखिल हो गए तो वो जिस्म आप ही का हो गया। कतरा कतरा था और समंदर समंदर था, लेकिन जब कतरा समंदर की आगोश में बसने लगा तो अब उस कतरे का वजूद समंदर ही है। समंदर का वजूद और कतरे का वजूद अलग अलग अब कहाँ पाया जाता है? ये तो मकाम इबादत है, इसलिए कि पैगंबर और इमाम एक दूसरे से कब अलग हैं, अक्ल कुल और नफ्स कुल इमाम से कब अलग हैं, अर्शी कुर्सी एक दूसरे से कब अलग हैं, वो तो मसावात रहमानी है। तो लिहाजा वो मकाम ऐसा है कि मैं ज़रा झिझक के साथ कहना चाहता हूँ कि वो लतीफ़ जिस्म जिन भी है, इंस भी है, पानी भी है, बशर भी है और सब कुछ। अब ये शिनाख पर है कि इंसान उसको क्या देखना चाहता है। हो सकता है कि किसी शख्स पर वो ही एक शाही जिन की सूरत में जहर हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल बात मैंने कही। लेकिन मुश्किल क्या है कि वो तो जो सही इब्दाया है उसके जहूरात बहुत सारे हैं कि वो किसी भी नाम से आपके सामने आ सकता है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि वो मौला के नाम से आए आपके पास और दीदार के उन्वान से आए आपके पास, और फिर कुछ देर के बाद आप तावील के तौर पर समझ सकें कि ये तो आप की अपनी रूह थी। जैसे फरमान में है कि वो अपनी रूह के आशिक थे, वो अपनी रूह के आशिक थे, वो मौला के आशिक थे। क्यों नहीं कहा गया कि वो मौला के आशिक थे? इस बात को क्यों नज़रअंदाज किया गया कि वो अपनी रूह के आशिक थे? एक बड़ी बात को छोड़ के छोटी बात कहना कैसा मुनासिब है? लेकिन नहीं, इसी में रहमत है, वो मौला के आशिक थे, इसमें क्या समझ आएगा, ये तो सब जानते हैं। सबसे ऊंची बात और सबसे रहमत वाली बात यह है, और तौहीद की बात यह है, और तरक्की की बात यह है, और फना की बात यह है, और असल में वासिल होने की बात यह है कि कहा जाए कि वो अपनी रूह के आशिक थे, और इस माना में भी कि मौला हमारी रूह है। इतनी अच्छी बात है कि अगर हम समझें कि मौला हमारी रूह है, लेकिन हमारी छोटी रूह नहीं है, हमारी आखिरी रूह है, हमारी सबसे ऊंची रूह है, हमारी सबसे बड़ी रूह है, और हमारी सबसे आखिरी रूह, हमारी सबसे पाकीज़ा रूह है, और हमारी सबसे कुदरत वाली, ताकत वाली और सल्तनत वाली रूह मौला। तो इसलिए ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि जुसई इब्दाइया जो इमाम का माजाती जिस्म है वो हमारा जिस्म है, वो आपका जिस्म, वो सब मोमिनीन का जिस्म, वो सब दुनिया वालों का वो जिस्म है जिसमें सब दुनिया वाले एक। इतनी फराख दिली है इस माली मजहब के अंदर कि हमारे कौल में, हमारे अकीदे में ये कहा जा सकता है कि वो सब दुनिया वालों का जिस्म है जिसमें सब इंसान एक। दुनिया का कोई मजहब ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जो लोग जहन्नम में हैं उनको भी एक वक्त में पाक कर दिया जाएगा, उनको भी पाक किया जाएगा, और उनको जहन्नम में डालने का मकसद ये नहीं है कि अवधि तौर पर उनको अजाब दिया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि उनकी तत्हीर हो जाए, उनकी पाकीज़गी हो जाए, और फिर आखिरकार उनको वो मकाम मिले जो मकामी वहदत है, जो मकामी यकताई है, और जहां मोनोरियलिज्म है। तो देखते हैं आपकी इस मौजू के अंदर कितने आला मौजूआत जमा हो जाते हैं कि ये तौहीद भी है और यह रहमत की इंतहा भी है और ये मारिफत भी है, खुदशिनासी भी है, और मोनोरियलिज्म भी है, और इसी में मकामी अजल और अबद की बात भी है, यानी वो मकाम जहां पर सब इंसान एक हैं, वो मकामी अजल है, वो मकामी अबद है। अजल कुछ दूर के माजी का नाम नहीं है, अबद कुछ दूर के मुस्तकबिल का नाम नहीं है, बल्कि अजल और अबद रूहानियत के उस आला तरीन मकाम का नाम है कि उसको हम हाल ही में देख सकते हैं, क्योंकि जो रूहानियत का वक्त है वो जमान और मकान से ऊपर है। लिहाजा ये सब बातें आपके लिए सोचने का मौका फराहम करते हैं, और ये बातें आपको समझ अता करती हैं, क्योंकि ये इमाम के ख़जाने की बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत ऊंची बातें हैं, और ये बहुत गहरी हिकमतें हैं, और ये रूहानियत की ख़ास ख़ास बातें हैं। चूँकि महफिल ऐसी है कि इसमें आप जितने भी हैं वो सब अजीज़ व मोहतरम हैं और बड़े प्यारे मिंबरान बैठे हैं और बहुत ही साफ और सुथरे हैं और सच्चे मोमिन हैं, इसलिए जी चाहता था कि हम आपको आज ख़ास ख़ास बातें बताएं, और अगर इन बातों में से कुछ सवालात उभरते हैं तो बेशक आप अब या बाद में जब भी चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसमें हमको फजले मौला इत्मीनान है, तसल्ली है, ये बातें शक और गुमान से बालातर हैं, और ये रूहानी हकीकतें हैं जो कई बार आजमाई गई हैं और कई दफ़ा इनका मुशाहिदा हो चुका है, तो ये बहुत ही साफ और सुथरी हकीकतें हैं, रोशन हकीकतें हैं। इनके जानने से मोमिन के ईमान को तकवीत मिलती है और मोमिन को बरतरी मिलती है, मोमिन को लिफ्ट मिलती है, क्योंकि इसको मुफातिहा कहते हैं। और जो भी रूहानियत की बातें, राज की बातें और इमाम के ख़जाने की बातें, बातिन की बातें बताई जाती हैं उसको मुफातिहा कहा जाता है। इससे मुरीदों को तरक्की होती है, उनकी रूह को बुलंदी मिलती है, और जितनी रूहानी तरक्की है वो असरार के जानने से, खुदा के बेदुन के जानने से तरक्की होती है और सुकून होता है, और बहुत से सवालात से, शकूक शुबहात से उनको छुटकारा मिलता है। ये आपकी अपनी खुशबख्ती है, ये आपकी अपनी कोशिश है, इसी तरह आपने अपने लिए एक इदारे को कायम किया है और मजलिस के लिए आपने इहतमाम किया है, इसलिए आप इस नेमत के हकदार हैं कि आपके सामने ये नेमत रखी जाए। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इस नेमत को कदम किया जाए, और इस पर खुदावंद का जितना शुक्र किया जाए हम साथ मिलके वो कम है, तो हमें मौला की शुक्रगुजारी हर वक्त बजा लानी चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आप कुछ नहीं हैं, और जो कुछ रहमत वनायत है वो मौला की है, और अगर हम लाशें ही हैं और इस लाशे को कोई शही बनाता है तो वो ही बनाता है, इसलिए कि ये तरबिया तो ये इल्म, ये दीन और ये नेमत और ये रास्ता, ये रोशनी और ये सारी रहमतें उसी की हैं, तो कायल होना चाहिए कि ये हमसे नहीं है और ये उसी की दौलत है, और दौलत ही लाजवाल है, और दौलत ही पाइंदा है। तो इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और इस सिलसिले में अगर कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है, अगर सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं। शुक्रिया प्यारे मेरे।
सर आपने अभी फरमाया याजूज माजूज,
जी हाँ,
बात फरमाया बेजहर और बात ने पर्दा, याजूज और माजूज को उसको चाटना और उसके बाद जहर जहरी निगाह और बातिनी निगाह मिल जाती है, उसके बाद में जहरी निगाह से हम रूहानी मुशायरा उस तरह याजूज और माजूज और जो पर्दा पर्दा क्या चीज है, उनका चाटना ये क्या चीज है, और जब दोनों निगाह मिल जाती तो फिर क्या चीजें देखते सर रूहानी में।
याजूज माजूज का एक दूसरा नाम है लश्कर इमाम जमान, क्योंकि वो इमाम जमान का काम करते हैं, वो कुछ रूहें हैं और पर्दा जो है वो रूहानी किस्म का पर्दा है जो नफ्स अम्मारे का बना हुआ है, यानी एनिमल साउल इवानी रूस का पर्दा है, तो इसलिए उसको चाटते हैं और उसके उठाने से इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी वाका नहीं होती है, क्योंकि रूही हैवानी को कसीब से लतीफ़ बनाया जाए तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो चीज़ें मुशाहदे में आती हैं वो कई चीज़ें हैं, एक तो रूह के ज़रात हैं जिनका बार बार हम जिक्र करते रहते हैं, रूह के ज़रात किसी और वक्त नज़र नहीं आते हैं जब तलक की ज़ाहिर और बातिन के दरमियान का वो हिजाब नहीं उठाया जाता है, तो रूह के ज़रात नज़र आते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो आखिरी मरहला है उसमें ज़ाहिरी नूरानी दीदार होता है, यानी इमाम का मज़ाती जिस्म, यानी इमाम अपने नूरानी जिस्म में सामने आता है और इमाम का ज़ुहूर हो जाता है, और ये आंख की बात हुई। और फिर इसके अलावा जो रूहानियत की आवाज़ें हैं जैसे सूरह सराफील और रूहों की गुफ्तगू या परिंदों का बोलना, ये सब चीज़ें जो बातिन की चीज़ें थी वो ज़ाहिर में नुमायान हो जाती हैं। और फिर खुशबुएं जो जन्नत की हैं जो रूहानी चीज़ें हैं उनका एहसास होता है वगैरह, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों का ज़ुहूर हो जाता है, मुशाहिदा हो जाता है या एहसास हो जाता है। ये आपके सवाल का मुकम्मल जवाब है।